नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे, गायत्री उपासना का स्वरूप।
हाँ।
अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं गायत्री उपासना मतलब बस मंत्र जाप कर लिया, शायद कोई हवन या पूजा पाठ और बस हो गया। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, असलियत कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, पूरी गुरुदेव ने ये बात बहुत साफ तरीके से समझाई है। ये जो बाहरी कर्मकांड है, ये सब क्रियाकलाप हो, ये उपासना का सिर्फ बाहरी रूप है। यूं समझिए कि जैसे हमारा शरीर होता है ना।
हाँ, शरीर
बस वैसे ही, लेकिन असली जान असली ताकत तो शरीर के अंदर जो प्राण है, जो चेतना है, उसमें होती है।
कई लोग सालों साल लगे रहते हैं पर लगता है कुछ बदल नहीं रहा। गुरुदेव बताते हैं ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अक्सर सिर्फ शरीर को ही सींचते रहते हैं, मतलब कर्मकांड करते रहते हैं, जबकि असली बदलाव वो तो प्राण जगाने से आता है, अंदर की चेतना से। ये बहुत आम गलती है। ये शरीर और प्राण वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। शरीर तो हमें दिखता है, उसकी सीमाएं हैं, पर प्राण की शक्ति, उसका अनुभव, वो तो एहसास की बात है। पर एक आम इंसान मतलब अपनी उपासना में इस प्राण को कैसे पकड़े, कैसे महसूस करे? ध्यान तो बार बार बाहरी चीजों पर चला जाता है, कितने मंत्र हुए, विधि सही है या नहीं।
हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव कर्मकांड को बेकार नहीं कहते।
बिल्कुल नहीं,
वो उसे उपासना का कलेवर कहते हैं, यानी शरीर।
अच्छा, कलेवर।
हाँ, ये जरूरी भी है। एक ढांचा देता है, अनुशासन लाता है, मन को थोड़ी देर टिकाता भी है, एकाग्रता में मदद मिलती है।
ये तो है,
पर इसका लाभ यही तक है, सीमित है। ये तैयारी है पर मंजिल नहीं। असली फायदा जीवन में जो स्थायी परिवर्तन आता है, वो उपासना के प्राण से ही मिलेगा। मतलब उन बाहरी क्रियाओं के पीछे जो चेतना है, जब वो जागती है तब बात बनती है।
तो फिर ये प्राण, ये चेतना का जागरण, ये असल में है क्या जिसे गुरुदेव इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं?
पूज्य गुरुदेव इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, रितंभरा प्रज्ञा।
रितंभरा प्रज्ञा?
हाँ
हाँ,
इसका मतलब है सत्य को धारण करने वाली विवेक बुद्धि।
अच्छा।
देखिए, ये कोई बाहर से आने वाली कोई देवी या कोई अलग से शक्ति नहीं है।
अच्छा।
ये हमारे ही अंदर की वो समझ है, वो जागी हुई चेतना है, जो हमें सही गलत का, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है, इसका फर्क करना सिखाती है। ये बताती है कि जीवन में असल में क्या पकड़ना है और क्या छोड़ देना है।
ये रितंभरा प्रज्ञा वाली बात सच में सोचने वाली है कि सही समझ ही शायद सबसे बड़ी ताकत है। और ये सिर्फ पूजा के कमरे तक नहीं, ये तो पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है।
हाँ बिल्कुल, जैसे हंस का उदाहरण देते हैं ना।
हाँ, हंस का,
कि वो पानी मिले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है।
हाँ।
नीर शीर विवेक।
हाँ।
बस जब ये रितंभरा प्रज्ञा जाग जाती है तो इंसान अपने जीवन में यही विवेक ले आता है।
सही बात है।
फिर वो दुनिया की फालतू चमक दमक, छोटे मोटे लालच, इन सबसे ऊपर उठ जाता है। जीवन के जो ऊंचे आदर्श हैं, जो असली कर्तव्य हैं, जो सच्ची खुशी है, वो उन्हें चुनता है, जैसे हंस मोती चुनता है, कीड़े मकोड़े नहीं। पूज्य गुरुदेव ने सावित्री सत्यवान की कथा का भी जिक्र किया है इसी संदर्भ में। सत्यवान कौन? जो सत्य और सिद्धांत के रास्ते पर चल रहा है, वो साधक।
और सावित्री?
सावित्री वही जागी हुई रितंभरा प्रज्ञा है, यही विवेक बुद्धि, यही प्रज्ञा रूपी सावित्री सत्य के रास्ते पर चलने वाले को हर मुश्किल से निकाल लेती है। यहां तक कि यमराज यानी मृत्यु या जीवन की बड़ी से बड़ी नकारात्मकता, उससे भी प्राण वापस ले आती है, मतलब बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर विजय दिलाती है।
पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य और पशु में जो फर्क बताया है, वो भी शायद इसी रितंभरा प्रज्ञा से जुड़ता है ना?
निश्चित रूप से। उन्होंने साफ कहा कि जो इंसान सिर्फ खाने पीने, इंद्रियों के भोग में और बस संतान पैदा करने में ही सारी जिंदगी लगा देता है, वो भले ही मनुष्य के शरीर में हो, पर जी तो पशु के स्तर पर ही रहे। ये रितंभरा प्रज्ञा ही वो चीज है जो हमें इस पशुता के स्तर से ऊपर उठाकर सही मायनों में मनुष्य बनाती है। ये हमें जीवन के बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाती है। खुद को बेहतर बनाना, दूसरों की सेवा करना, परमार्थ के काम करना, ये याद दिलाती है कि भाई, हमारा जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हुआ है।
तो फिर सच्ची साधना का मतलब सिर्फ माला घुमाना या दिया जलाना या घंटों तक मंत्र पढ़ना नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपने ऊपर काम करना, अपनी कमियों को दूर करना।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गुरुदेव के हिसाब से सच्ची साधना है ही यही, अपनी चेतना का परिमार्जन, अपने मन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको पहले तो पहचानना।
हाँ, पहचानना।
और फिर उनको धोने के लिए, उनको हटाने के लिए कोशिश करना, संघर्ष करना, लगातार खुद को सुधारने की कोशिश, यही असली तप है। जैसे किसान क्या करता है,
खेत को तैयार करता है।
हाँ, खेत को जोतता है, कंकड़ पत्थर निकालता है, तब वो उपजाऊ बनता है। पहलवान रोज मेहनत करके शरीर को साधता है। या जैसे किसी कामयाब व्यापारी ने, मान लीजिए बाटा का ही उदाहरण ले, उन्होंने अपने काम को कितनी लगन से साधा, है ना?
सही बात है।
वैसे ही हमें अपनी चेतना को साधना है, उसे साफ करना है, शक्तिशाली बनाना है।
ये सोचना ही कितना शक्तिशाली लगता है कि सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, यहाँ तक कि भगवान का अनुभव भी कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो सब हमारी अपनी ही सुधरी हुई, सधी हुई चेतना से ही निकलेगा।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव यही तो कहते हैं, जैसे शहद कहीं बाहर फूल पर चिपका नहीं मिलता, वो तो मधुमक्खी के अंदर बनता है।
हाँ,
दूध घास में नहीं होता, वो गाय के अपने सिस्टम से अंदर बनता है। ठीक वैसे ही सारी दिव्यता, सारी शक्ति, शांति, सब कुछ हमारे अपने अंदर ही है। गायत्री उपासना उसी अंदर के सोते को, उस स्रोत को जगाने का तरीका है। तभी तो गीता में कहा गया है,
हाँ,
आत्म एव ह्यात्मनो बंधु आत्म एव रिपुरात्मना। मनुष्य खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। हम अपनी चेतना को गिरा दें तो अपने दुश्मन बन गए, और अगर उसे उठा लें, सुधार लें, तो अपने सबसे बड़े दोस्त, अपना उद्धार करने वाले बन सकते हैं।
तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो गायत्री उपासना का निचोड़ यही हुआ कि अपनी चेतना को जगाओ, अपनी विवेक बुद्धि यानी रितंभरा प्रज्ञा को विकसित करो। बाहरी कर्मकांड इसमें मदद कर सकते हैं, पर मंजिल तो है खुद के द्वारा खुद का उद्धार।
बिल्कुल, यही सार है। उपासना बाहर नहीं है, उपासना अंदर है।
तो चलिए, आज की बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर बाहरी कर्मकांड शरीर है और रितंभरा प्रज्ञा प्राण है, तो आज अभी से हम अपने रोज के जीवन में, अपनी सोच में और अपने व्यवहार में वो कौन सा एक छोटा सा प्राण तत्व, मतलब विवेक का एक छोटा सा अंश जोड़ सकते हैं, जिससे उपासना का असली मतलब, उसकी ताकत धीरे धीरे ही सही पर महसूस होनी शुरू हो जाए।